जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के उपकारी हैं दिन को स्वरूप जान लागते भई जो भक्ति पाए को नामाय स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम इते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख सोहन चाहत ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है थक गया ये भी
हाँ
मेरे को बताया एम्पलीफायर थक गया इसलिए आज सीडी प्रवचन नहीं हुआ प्रवचन सार परमागम शास्त्र के परिशिष्ट में श्रुत ज्ञान प्रमाण से आत्मा प्रमेय होता है। जिस प्रकार आत्मा अनंत शक्तियों और गुणों में व्याप्त है उसी प्रकार आत्मा अनंत धर्मों में भी व्याप्त है और उन धर्मों को एक एक धर्म को जानने वाला ज्ञान नए कहलाता है तथा जो श्रुत ज्ञान अनंत नयों में व्याप्त है तो अनंत नयात्मक होने से उसे प्रमाण कहा है। कल इस विषय की चर्चा भूमिका के तौर पर अपन ने की थी। कुछ धर्मों का वर्णन आचार्य देव ने किया है। गुरुदेव को अध्यात्म का रस तो था ही लेकिन वे ग्रंथों की भाषा और शैली पर भी रीझते थे तो एक अनुप्रास अलंकार का आनंद लेते थे। वाह क्या गजब की बात है, शक्तियां भी 47 हैं, धर्म भी 47 हैं और कोई जानबूझ के उनने मैच किया हो ये फिगर, ऐसा लगता नहीं, कुदरत की मात है। तो एक और 47 का फिगर वो लाते थे, गातिया कर्मों की प्रकृतियां भी 47 हैं। तो ये जो 47 नयों और 47 धर्मों को जानकर अपने धर्मी भगवान आत्मा का अवलंबन लेते हैं तो उनकी 47 प्रकृतियां भी नष्ट हो जाती हैं, यानी छायिक भाव प्रकट हो जाता है। कल अपन ने शक्तियों और धर्म के बारे में थोड़ी तुलनात्मक चर्चा की थी। आप उस पर विचार करना, क्या धर्म का स्वरूप है, क्या शक्ति का स्वरूप है, और उदाहरण जो अपन ने दिए थे जैसे कोई माँ है वो करुणामयी है वात्सल्यमयी है ये उसके गुण हैं और उसमें जो वात्सल्य रूप परिणमन करने की क्षमता है समझ लो वो शक्ति है लेकिन वो माँ है पिता है एक पत्नी है बहन है ये सापेक्ष है ये धर्म है। अब अपन 47 नयों के विषय भूत 47 धर्मों की चर्चा प्रारंभ करते हैं। इनमें आप देखिए पेज नंबर 30 पर पहला जोड़ा है द्रव्य नय और पर्याय नय। वैसे संपूर्ण वस्तु ही द्रव्य पर्याय आत्मक कहलाती है लेकिन यहाँ वो वहां द्रव्य पर्याय आत्मक वस्तु में सारी वस्तु के दो पड़खे हैं, एक द्रव्य रूप और एक पर्याय रूप। यहाँ दो पड़खों की बात नहीं है, यहाँ द्रव्य नाम का एक स्वतंत्र धर्म है और पर्याय नाम का एक स्वतंत्र धर्म है। ये सब बातें अपने को नए प्रज्ञापन में मिलती हैं। सच कहता हूँ इतनी महिमा आती है गुरुदेव के समझ लो एक श्रुत ज्ञान की कि कैसा उसने जिनवाणी में अवगाहन किया है, ये निकाल निकाल के बताया कि वो द्रव्य अलग चीज है, ये द्रव्य अलग चीज है, ऐसा। तो द्रव्य नहीं का क्या स्वरूप है, न कहो या धर्म कहो, आत्म द्रव्य द्रव्य नय से पट मात्र की भांति चिन्ह मात्र है, पर्याय नय से तंतु मात्र की भांति दर्शन ज्ञानादि मात्र है। इन्हें उदाहरण दिया है कि एक कपड़ा है तो क्या है, कोई पूछे क्या है तो कपड़ा है, तो ये उसका द्रव्य नाम का धर्म हो गया। जिसने तानो बानो को धारण किया है, गुण पर्यायों को धारण किया है, ख्याल में आए ना, ऐसी एक योग्यता वस्तु में है, पर्टिकुलर एक योग्यता का नाम धर्म है। समझने की कोशिश करना भाई, 47 नयों का विषय थोड़ा अचर्चित है, अल्पचर्चित है, सभाओं में तो बहुत लगभग नहीं ही लिया जाता है। ये तो दैनिक स्वाध्याय की धारा में जब ग्रंथ आवे, अभी जैसे आज मैंने एक गुरुदेव का व्याख्यान सुना था, ये 154 नंबर वाला, तो प्रारंभ में ही गुरुदेव ने बोला जी अधिकार 40 चर्चा तो एनी जो है ना, आप इसमें तो भगवान आत्मा की बात तो आई नहीं। अरे जो प्रकरण चलता है मुख्यता उसकी होती है, अब वो भगवान आत्मा को कितना सपोर्ट करता है ये अपन को अपनी रुचि के बल से निकालने की बात है। तो कपड़ा है तो वो तानों बानों को अलग अलग देखना ये पर्याय की बात हुई। ताना बाना समझते, धागे जैसे लंबाई चौड़ाई में लगा के उसको कपड़ा बुनते हैं। द्रव्य नाम के धर्म से देखो तो कपड़ा है, उसमें भेद नहीं किया। पर्याय नाम के धर्म से देखो तो उसमें धागे, समझ में आया। तो धागे रूप रहे वस्तु यानी ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसे गुण रूप रहे जुदे जुदे, ऐसी भी उसमें योग्यता है। और ये 47 जो नए हैं इनका एक ग्रुप बनाया बहुत बढ़िया, इसमें तो नहीं आ पाए, वो शायद नए रहस्य में आएगा कि 7 तो सप्तभंगी संबंधी है, 4 निक्षेप संबंधी है, नाम स्थापना द्रव्य भाव, ये ग्रुप है, कितने हो गए 11, अब बाकी बचे कितने 36, तो 18 जोड़े उन्होंने परस्पर विरोधी धर्मों के बनाए। अब उनमें भी 6-3 जोड़े तो ज्ञान और ज्ञेय के रिलेशन पर चर्चा करते, ज्ञान ज्ञेय में जाता है कि नहीं, ज्ञेय ज्ञान में आता है कि नहीं, ये वाली बात, ज्ञान में ज्ञेय भरे हैं कि नहीं, ये खाली है कि भरा है, तो ये सर्वगत नए असर्वगत नए, ऐसे 3 जोड़े और 4 जोड़ों में 5 समवाय संबंधी चर्चा है, बाकी में स्वतंत्र फुटकर बात है। ये इसका एक आइडिया मैंने आपको दिया। तो पहला ये स्वतंत्र जोड़ा है, जैसे वस्त्र में अनेक ताने बाने रंग रूप तथा आकार आदि होते हैं, परंतु उन्हें गौण करें, धागों को गौण करें और अकेले वस्त्र को देखें, तो देखें ये तो ज्ञान की खूबी है, लेकिन उसमें भी ऐसा वस्त्रत्व वस्त्र पड़ा, समझ में आया। देखो एक व्यवहार में भी एक बात होती है, समूह वाचक संज्ञाएं होती है, सुना होगा आपने, जैसे ये सभा है, बरात है, कक्षा है, सेना है, ये सब क्या है, कक्षा को ढूंढो, कक्षा लग रही, कहां कक्षा तो दिख रही, आदमी बैठे, ये समूह वाचक संज्ञा है। बहुत सारे व्यक्ति किसी एक विशेष प्रयोजन को लेकर एकत्रित हुए तो उनको अमूर्तिक नाम दिया जाए, सेना अमूर्तिक है, लेकिन उसमें रथ है, घोड़े हैं, सैनिक हैं, हथियार हैं, समझ में आया, वो तो दिखेगा लेकिन सबको मिला के बोलेंगे सेना। तो इसी तरह से धागों के समूह को वस्त्र कहते, तो उस वस्त्र में समूह रूप रहने की योग्यता, उसका नाम द्रव्य नामक धर्म है, और उसमें धागे भी हैं, तो धागों के धागे रूप रहने की योग्यता, उसका नाम है पर्याय नाम का धर्म। गजब बात है। अपने चिंतन में पर्याय शब्द से केवल नई उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, समुद्र की लहरों की भांति अपनी पकड़ वहीं तक है। ये गलत नहीं है लेकिन ये अधूरी बात है। नियम सार में बहुत सुंदर परिभाषा आई है पर्याय की, परिसमनता भेदम गच्छति इति पर्याय, जो हर तरह से समनता चारों तरफ से भेद को प्राप्त हो गए, यानी भेद को ही पर्याय कहते सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो। बच्चों को तो इतना गहराई से कैसे बताएंगे, तो उनको तो उत्पाद गुणों के प्रणमन को पर्याय कहते हैं, अकेला उतना परिचय कराया। लेकिन अखंड वस्तु में उत्पाद वे ध्रुव ऐसा भेद करना वो भी पर्याय आर्थिक नहीं का विषय है। अखंड असंख्यात अखंड प्रदेशों में ये एक प्रदेश है, ये दूसरा प्रदेश है, ये तीसरा प्रदेश है, ऐसा प्रदेश भेद ये भी पर्याय नहीं का विषय पर्याय है। इसी तरह त्रिकालवर्ती अखंड वस्तु में एक एक समयवर्ती अंश भेद करना ये काल संबंधी पर्याय आर्थिक नहीं, और एक एक गुण भेद करना ये भाव संबंधी पर्याय आर्थिक नहीं। नए चक्र में है ये विषय द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो द्रव्य में द्रव्यार्थिक ने पर्यार्थिक नहीं लगाया, क्षेत्र में द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक लगाया, काल में द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक लगाया, भाव में द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक लगाया और प्रमाण भी लगाया। है विशेष कठिन नहीं, ज्यादा एकाध बार यहाँ चर्चा हो भी चुकी। तो अपन तो पर्याय उसको समझते, तो ये जो पर्याय नाम का धर्म है ये उत्पन्न ध्वंसी वाला पर्याय परणमन रूप नहीं है, ये तो वस्तु धागे रूप रहती है। उदाहरण और सिद्धांत में आत्मा ज्ञान रूप है, दर्शन रूप है, चारित्र रूप है, ऐसा भिन्न भिन्न रूप रहना ये उसका पर्याय नाम का धर्म है। द्रव्य धर्म भी त्रिकाली है और पर्याय धर्म भी बोले क्यों नहीं वो भी त्रिकाली। अब 31 पेज पे देखिए, द्रव्यार्थिक नए पर्यार्थिक नए और द्रव्य पर्याय नयों में अंतर है। कल मैंने बताया था कि जब ये 47 नयों पर लिखने में मुझे सोचने में साल भर से ज्यादा लगा, क्योंकि ऐसा लगा कि इतना बढ़िया गुरुदेव ने विवेचन किया है, फिर दादा ने भी 47 नयों पे नए चक्र में लिखा है, अभी अपन किस तरीके से लिखें ताकि सरलता आवे। नई चीज लिखना है तो उसमें एक सरलता वाली विशेषता तो होनी चाहिए ना, और जो नए रहस्य लिखने में मेरा एक दृष्टिकोण ये था कि जब मैं पढ़ाया मैंने करी उसको 20-21 साल, तो जो उसमें पढ़ाने में जो चिंतन ज्यादा आता था समझाने के लिए उसको लिपिबद्ध करना, बाकी जो है वो तो उसमें है ही है, भाषा है, परिभाषा है, आगम प्रमाण है, तो जो उसमें आगम प्रमाण वगैरह है उनको तो गौण किया, और जो चिंतन जो उस विषय को स्पष्ट करने के लिए जरूरी है मुख्यतः उसकी की। तो अपन ने कहा कि जो उसमें नए चक्र में जो भी वर्णन है उसके पॉइंट इसमें डाल दिए, पॉइंट वाइज हो जाएगा तो सरल हो जाएगा। ऐसे भाई साहब ने समय सार का इसमें पॉइंट वाइज लिखा है, मुझे नहीं पता था वो ऐसा कर रहे, लेकिन कुदरती स्टाइल आ गई। ये गुरुदेव के नए प्रज्ञापन में से है, द्रव्यार्थिक नए पर्यार्थिक नए और द्रव्य नए और पर्याय नयों में अंतर है। द्रव्यार्थिक नय का विषय संपूर्ण सामान्य स्वभाव रूप अभेद धर्म है। क्या कहा? हाँ देखो, द्रव्य नय द्रव्य धर्म जो है वो भी एक अनंत धर्मों में से एक धर्म है, लेकिन उस धर्म का काम क्या है, उसका स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप यह है कि वस्तु चिन्ह मात्र देखना आत्मा, तो चिन्ह मात्र रूप रहने की योग्यता ये उसका द्रव्य नाम का एक धर्म हुआ। और द्रव्यार्थिक नय का विषय धर्म नहीं है, द्रव्यार्थिक नय का विषय है धर्मी, धर्मों को धारण करने वाला जो त्रिकाली अंश है, अभेद अंश है, सामान्य अंश है, वो धर्मी, वो द्रव्यार्थिक नय का विषय। और द्रव्यार्थिक नय के विषय में भी समझ लो 10 भेद हैं, तो जो 10वां एक द्रव्यार्थिक नय का विषय है जिसको परम भाव ग्राही द्रव्यार्थिक ने कहा है, वो तो ध्येय है, आलम्बन का विषय है, दृष्टि का विषय है, जो परम भाव ग्राही ख्याल में आए ना। और ये तो एक पर्टिकुलर एक योग्यता की बात है, इतना फर्क समझना। द्रव्यार्थिक न्याय का विषय संपूर्ण सामान्य स्वभाव रूप अभेद धर्म है, जबकि द्रव्य न्याय अनंत धर्मों में से एक धर्म है। इसी प्रकार पर्यार्थिक न्याय का विषय वस्तु का विशेष स्वभाव है, वो समझ लो पूरी वस्तु को दो भागों में बांटो तो एक एक पोर्शन द्रव्यार्थिक न्याय का विषय बनता है, एक पोर्शन पर्यार्थिक न्याय का विषय बनता है। यहाँ द्रव्य न्याय की बात है, जबकि अनंत धर्मों में से एक समझ लो एक अनंतमा भाग हुआ वस्तु का, अनंत धर्म है ना, तो एक धर्म को पकड़ा तो ये अनंतमा भाग हुआ समझने के लिए। और द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक के विषय में प्रमाण के विषय भूत संपूर्ण वस्तु आती, और द्रव्य न्याय और पर्याय न्याय के विषय में संपूर्ण वस्तु नहीं आती, दो ही धर्म आए, दो परस्पर विरोधी दो धर्म आए। अब आप एक और मजेदार बात सुनिए, द्रव्य शब्द के कितने कितने जगह किस किस अर्थ में प्रयोग होते, तीन तो उसमें बताए हैं काय में, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक न्यायों की जब चर्चा की है, और एक चौथा ये आ गया द्रव्य नाम का धर्म। पंकज भाई तीन प्रयोग कौन से हैं? तो अपन पहले एक बड़ा वर्तुल लेते, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी रिड्यूस करते जाएंगे। तो सबसे व्यापक अर्थ में जो द्रव्य शब्द का प्रयोग है वो तो द्रव्य नामक एक वस्तु, जीव है, पुद्गल है, धर्मास्ति है, अधर्मास्ति है, आकाश है, काल है, छह द्रव्य है, इन तो द्रव्य ही संज्ञा है ना इनकी, इनमें उत्पाद है, द्रव्य है, इनमें द्रव्य गुण पर्याय है, इनमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, क्रियावती शक्ति है, सब प्रदेश है, अप्रदेश है, यानी पूरा गे तत्व प्रज्ञापन में जो वर्णन है वो द्रव्य शब्द का एक अर्थ ये होगा। ये सर्वव्यापी जिसमें संपूर्ण वस्तु अपने गुण पर्यायों सहित, सुख दुख सहित, विकार अविकार सहित, जो कुछ भी उस वस्तु के प्रणमन में है वो व्यवहार ने से संयोग भी चिपके हुए ध्यान में है ना, वो व्यवहार की बात। पहला द्रव्य शब्द का अर्थ वो, फिर दूसरा द्रव्य शब्द का अर्थ उसी पहले वाले द्रव्य में दो नयों से उसको देखना, एक द्रव्यार्थिक नय से और एक पर्यायार्थिक नय से। तो जो एक उसका अभेद सामान्य एक नित्य ध्रुव ऐसा जो पड़खा है उसी द्रव्य में से एक हिस्सा निकाला, जब 100 वर्ष में एक बाल निकाल सकते हो आप लोग, मुझे याद आती है उसकी, यहाँ चला था ना शिविर उज्ज्वला सार का, काल परावर्तन में सागर कितना बड़ा होता है, तो इतना धैर्य आपको है कि 100 वर्ष में एक बाल निकाल सकते, दूसरे गड्ढे में डाल सकते हो और फिर उसको भर सकते हो, तो फिर यहाँ तो इतना हम इतनी ज्यादा परीक्षा तो नहीं ले रहे आपकी, यहाँ तो केवल वो द्रव्य में से एक हिस्सा निकालने की बात कर रहे तो वो एक एक पड़खा द्रव्यार्थिक न्याय का विषय बना और एक पड़खा, वहाँ पहले वाले में क्या था, संपूर्ण वस्तु का नाम द्रव्य था जिसमें गुण पर्याय भी शामिल थे। अरे भारत राष्ट्र है तो भारत का एक जिला भी भारत है, वो कोई अभारत थोड़ी, वो पाकिस्तान थोड़ी है, तो द्रव्य का एक एक अंश चप्पा चप्पा वो भी द्रव्य ही है, द्रव्य का ही विस्तार है, ख्याल में आया ना। और जब अपन नए विभाग से देखेंगे तो जो अभेद सामान्य एक ध्रुव द्रव्य ध्रुव वस्तु है वो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय बनती है, और जो भेद रूप है अनित्य है और एक गुण रूप है समन्वय भेद रूप है वो पर्यार्थिक न्याय का विषय बनती है, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में पर्यार्थिक न्याय और द्रव्य क्षेत्र काल भाव में द्रव्यार्थिक न्याय। ये निकालने में आपको कठिनाई नहीं होगी क्योंकि द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक की चर्चा अपने यहाँ आई है। आप देखिए ये द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक न्याय मुख्यतया आगम शैली के नए हैं, इनमें प्रयोजन वस्तु को समझने का होता है, अनुभूति की बात इनमें सीधे नहीं आती, ख्याल में आया ना, निश्चय व्यवहार में अनुभूति की बात को लेकर के बात चलती है, वो प्रकरण अलग है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैंने कहा। एक मुझे तो ये बताना है कि 13वीं गाथा में उसकी टीका में गाथा तो ये बोलती है कि 9 तत्वों को भूतार्थ नय से जानना सम्यक्त है, गाथा तो ये कह रही है, लेकिन टीका में 9 तत्वों का वर्णन करने के बाद प्रमाण की भी बात कही, नयों की भी बात कही और निक्षेप की भी बात कही। और गजब यह है कि नयों की बात जब उन्होंने कही तो उन्होंने निश्चय व्यवहार नयों के बजाय द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नयों की बात कही। त्रिवेणी गाथा भी टीका में और क्या क्या लिखा मालूम, द्रव्य पर्याय से अनालिंगित वस्तु स्वभाव की ओर जाके देखा जाए, गजब है। इसे कहते ब्रह्म रोग है जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे, द्रव्य और पर्याय से अनालिंगित वस्तु स्वभाव को देखा जाए तो द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए अभूतार्थ है दोनों। निश्चय और व्यवहार में कौन भूतार्थ है अभूतार्थ है ये तो ग्यारहवीं गाथा में किया है, यहाँ द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक को खड़ा किया। तो पूरी द्रव्य में से एक हिस्सा निकाला, द्रव्य द्रव्यार्थिक द्रव्य का द्रव्यार्थिक नय का द्रव्य, द्रव्यार्थिक नय का क्षेत्र, द्रव्यार्थिक नय का काल, द्रव्यार्थिक नय का भाव। तो ये द्रव्यार्थिक नय का विषय, पहला संपूर्ण वस्तु, दूसरा द्रव्यार्थिक नय का विषय, अभी तीसरे गोले में छोटे में आई है। जब वस्तु में चार पड़खे हैं कौन कौन से, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, तो क्षेत्र काल और भाव का नेचर उनकी रचना उनका स्वरूप कुछ जुदा होना चाहिए और द्रव्य का कुछ जुदा होना चाहिए। तो द्रव्य वो चीज है जिसमें क्षेत्र होता है, जिसका विस्तार होता है, द्रव्य को विस्तार चाहिए, विस्तार स्वयं द्रव्य नहीं है, समझ में आया, लेकिन द्रव्य का विस्तार है तो वो क्षेत्र हो गया, द्रव्य की परिणति है वो काल हो गई, द्रव्य की शक्तियां हैं वो भाव हो गई। तो क्षेत्र काल और भाव जिसमें रहते हैं जिनका जो आधार है वो द्रव्य है। तो दूसरे में और तीसरे में क्या अंतर है, दूसरे वाले में तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों का द्रव्यार्थिक नय का विषय है और तीसरे वाले में केवल क्षेत्र काल और भाव का अलग करके मात्र द्रव्य उसकी बात की जो गुण पर्यायों का आधार है। ये क्या बताएं आखिर, ये भी एक पराश्रित व्यवहार है। द्रव्य को सीधे द्रव्य से कहना जानना बड़ा मुश्किल है तो उसी के गुण पर्यायों के भेद से उसकी चर्चा की जाती है कि जो गुण पर्यायों में व्याप्त रहता है इत्यादि इत्यादि। तीन अर्थ हो गए, सबसे बड़ा संपूर्ण वस्तु, फिर छोटा द्रव्यार्थिक नय का विषय, फिर उससे छोटा क्षेत्र काल और भाव से भिन्न द्रव्य, अब उससे छोटा द्रव्य धर्म। ये आए ना द्रव्य धर्म आए ना, इसमें
अभिन्न कर रहे
हो, अभिन्न और भिन्न का सवाल नहीं है, पहचान का सवाल है कि उसको किस तरीके से पहचाना जा रहा है। तो जो गुण पर्याय को धारण करता है क्षेत्र काल भाव जिसमें रहते, ख्याल में आए ना, जैसे नगर में नागरिक रहते हैं उसी तरह क्षेत्र किसके आधार से, किसमें क्षेत्र होता है, विदेश किसके होते, ये अभी 141-42 गाथा में गुरुदेव लेने वाले, जो मैं सुन रहा हूँ इसलिए मैं कहता हूँ गुरुदेव लेने वाले, और हमारे स्वाध्याय में ये आएगी 21 अप्रैल के बाद से, ऐसा है भैया। तो अभी द्रव्य नाम का धर्म, अब देखिए जरा ये दोनों नए वस्तु की अभेद तथा भेद रूप एक एक योग्यता को बताते, वस्तु के संपूर्ण अभेद स्वरूप को नहीं बताते, लेकिन अभेद पना वस्तु में रहे ऐसी उसमें एक लायकात है, उस लायकात को द्रव्य नाम का धर्म बताता है, और वस्तु में भेद करके देखने की भी दिखने की भी योग्यता है तो वो पर्याय नाम का धर्म बताता है। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, मैंने वहां यहाँ द्रव्य नाम के चार इसलिए नहीं लिखे कि पहले वो आ चुके हैं, तीन तो आ ही चुके हैं, चौथा एक यहाँ आ गया, लेकिन अभेद शब्द का प्रयोग कितनी जगह होता है, देखो जरा ध्यान दीजिए कि अभेद शब्द कितने अर्थों में प्रयुक्त होता है। अभेद अनुभूति जहाँ ध्यान ध्याता देह का भी विकल्प नहीं, ये मोक्ष मार्ग है, ये पुरुषार्थ पूर्वक प्रकट होती है स्वकाल में, ख्याल में आए ना, ये स्वभाव नहीं है, ये स्वभाव का अवलंबन है। अभेद अनुभूति स्वभाव की प्रतीति, स्वभाव का जानना, स्वभाव में लीनता, इसे रत्नत्रय भी कहते हैं। तो पहला तो ये अभेद का अनुभव हुआ, लालचंद भाई इसको कहते थे जूना अभेद और नया अभेद, तो ये नया अभेद है, ये नया अभेद है, प्रकट होता है। अभी दूसरा द्रव्यार्थिक नय या शुद्ध नय का विषय, द्रव्यार्थिक नय के छह दो भेद हैं मुख्यतया, शुद्ध द्रव्यातिक और अशुद्ध द्रव्यातिक। अशुद्ध द्रव्यातिक में भी भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यातिक नहीं, कर्मोपाधि निरपेक्ष, भेद कल्पना निरपेक्ष, उत्पाद व्यय निरपेक्ष, और सापेक्ष कह दो तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक ने। तो अभेद का दूसरा अर्थ द्रव्यार्थिक ने का अथवा शुद्ध ने का विषय। भेद कर दोगे तो व्यवहार ने का विषय हो जाएगा या पर्यायार्थिक ने का विषय हो जाएगा, अन्यथा अभेद दृष्टि से देखेंगे तो वो द्रव्यार्थिक ने का। वो जो पहला वाला है वो तो सम्यक दर्शन के लिए जीव प्रयत्न करता है और सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो उस अभेद अनुभूति के काल में प्रकट होता है, पर उसी से ही गुण स्थान बढ़ते हैं, अनुभूति का जो जो अंश बढ़ता है उससे बढ़ते हैं। वो तो पर्याय वाले अभेद अनुभूति की बात, और दूसरा वाला है ये तो ज्ञानी हो अज्ञानी हो एकेंद्रीय हो दो इंद्रिय वस्तु का स्वरूप है, ये तो प्रत्येक जीव में त्रिकाल विद्यमान रहता है, ये वाला अभेद भेद भी है। तो ये एक दूसरा अर्थ हुआ। अभी तीसरा ये द्रव्य ने का विषय, समस्त भेदों में व्याप्त रहने की योग्यता रूप एक धर्म, ये भी इस अर्थ में भी यहाँ उसका प्रयोग किया गया है। बहुत कठिन नहीं है, आपको ज्यादा जिज्ञासा हो जरूर आप नए प्रज्ञापन पढ़ें, और उसमें जो अथवा जो 47 नए के प्रवचन गुरुदेव के हैं उपलब्ध वो भी सुने तो आपको अच्छा विस्तार से हो जाएगा। अब मैं प्रारंभ में पौने 12 तक लेना, अब मैं प्रारंभ करता हूँ सप्तभंगी संबंधी नए। सप्तभंगी की चर्चा जैन दर्शन में समझ लो उसकी एक पहचान है, और पूजा में भी जब जिनवाणी की बात आती है तो सप्तभंग जहां तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, अथवा वो सो स्याद वाद में सप्तभंग गणधर गूंथे बारे जो सुवंग, ये सब आती है। मतलब नाम तो बहुत आता है लेकिन हमारे स्वाध्याय में इसका प्रयोग हम बहुत कम करते हैं, जितना निश्चय व्यवहार का करते हैं अथवा अन्य विषयों का जो द्रव्यानियोग संबंधी है उनका जितना करते हैं उतना इसका नहीं कर पाते। एक तो थोड़ा एक ध्रुव भी है, और दूसरे हमारे प्रैक्टिकल में किस रूप में ये बैठा हुआ है उतना हम चिंतन नहीं कर पाते, इसलिए इसकी चर्चा नहीं हो पाती। लेकिन कुछ भी हो हमें तो इसकी मेहमत तब आई कि जब हम सेकंड ईयर में पढ़ते थे जयपुर में, और वहां विमल दास जैन थे राकेश, वो सप्तभंगी तरंगणी के लेखक मुसलोक वाक्य के आधार से लिखी थी शायद, विमल दास जैन नाम के एक ग्रस्त विद्वान थे और उन्होंने वो सप्तभंगी तरंगणी बिल्कुल फुल संस्कृत में ही लिखी थी, वो ही हमारे कोर्स में थी। अब इतनी संस्कृत तो जानते नहीं थे, और जयपुर में जो पढ़ाई है उसमें मुख्यतः जैन दर्शन की है, जैन दर्शन के विषय कॉलेज के कोर्स में भी, स्मारक में तो जो है वो तो है ही है, कॉलेज में भी जैन दर्शन के विषय थे। संस्कृत तो एक सामान्य रूप में ही पढ़ी जाती थी, और उसकी प्रिंटिंग इतनी खराब थी जो पुस्तक थी तो पढ़ते ही ना बने, तो महान तकलीफ हुई उसको पढ़ने में। अनुवाद भी बहुत थर्ड क्लास, फिर योगेश ने कर दिया बाद में शायद। खैर तो मैं ये कह रहा हूँ कि भंग सात ही क्यों होते हैं, आठ क्यों नहीं होते, छह क्यों नहीं होते, इसके बारे में बड़ी चर्चा है। उसमें प्रश्न सात होते हैं, प्रश्न सात क्यों होते हैं, जिज्ञासा सात होती है, जिज्ञासा सात क्यों होती है, वस्तु में उस प्रकार की योग्यताएं ही सात प्रकार की ले गए अंत में स्वभाव पर ही योग्यता के रूप में। अब इसमें कुछ धर्म तो खासकर तीन जो भंग हैं वो अपने प्रयोग में बहुत आते हैं, अस्तित्व ने, नास्तित्व ने और अवक्तव्य ने। अस्थि नास्ति का उतना ज्यादा अपनी लाइफ में अपने स्वाध्याय में भी उतना ज्यादा यूज नहीं आता। मैं तो नास्तित्व ने पे बहुत रीझता हूं, जो बन गए दृष्टि के विषय में फलानी चीज है कि नहीं, गुण भेद है कि नहीं, धर्म भेद है कि नहीं, पर्याय भेद है कि नहीं, तो तुम क्या नहीं है ये देखना है कि क्या है ये देखना है, दोनों देखना है। तो एक अस्तित्व नहीं से दिखेगा, एक नास्तित्व नहीं से दिखेगा, यानी दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है, ये दृष्टि के विषय के संबंध में नास्तित्व नहीं का कथन है। और गुरुदेव के चिंतन में ये अस्तित्व और नास्तित्व इतनी गहराई से बैठे हुए थे कि जैसे समझ लीजिए शक्कर में मिठास, द्रव्य में गुण, वैसे उनके चिंतन में बैठे हुए थे। तो जब भी कोई स्यादवाद का मिसयूज करे कि स्वभाव से भी धर्म होता है या आत्मा जड़ की क्रिया भी कर सकता है और अपनी क्रिया भी कर सकता है, ऐसा अनेकांत है, तो गुरुदेव उसको अस्ति नास्ति के शस्त्र से उसका निषेध करते थे। गेम नहीं, अपने से है और पर से नहीं, इसका नाम अनेकांत है। यहां तक कि वे शुभराग में भी अनेकांत घटाते थे, अस्ति नास्ति घटित करते थे कि शुभराग बंध का कारण है और मुक्ति का कारण नहीं, तो है और नहीं दोनों हो गया ना उसमें। आत्मा अपने परिणामों का करता है और पर के परिणामों का करता नहीं, तो ऐसा अनेकांत। तो ये अस्तित्व और नास्तित्व इसके पहले भंग हैं, इसमें तीनों का वो लिखा है। अब एक विचित्र बात जो हमारा विद्वत समाज यहाँ आया है उसको लक्ष्य करके मैं कहता हूँ, पहले मैं पढ़ता हूँ। देखो पेज नंबर 31 पर, वो आत्मद्रव्य अस्तित्व नय से लोहमय डोरी और धनुष के मध्य में स्थित संधान दशा में रहे हुए लक्ष्योन्मुख बाण की भांति स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अस्तित्व वाला है। एक बाण को उन्होंने उदाहरण बताया, और किसी भी वस्तु का जो अस्तित्व है वो चार पिलर पे टिका रहता है, चार आधारभूत बातें होनी चाहिए। कल ये बात चर्चा में थोड़ी उठी थी गोष्ठी में। देखो वस्तु को समझने की उसकी रचना समझने की बात हो तो चार चाहिए, और अनुभूति वाली बात हो गए तो क्षेत्र का कोई उसमें योगदान नहीं है। अब समझ लीजिए एक संगी पंचेंद्री जीव है और बहुत छोटी अगवाने वाला है और सम्यक दृष्टि है, या यूं समझ लो भगवान महावीर की अवगाहना कितनी थी, 7 हाथ की, और आदिनाथ की 500 धनुष। आनंद किसको कम किसको ज्यादा, और धर्म जो प्रकट होता है वो ध्यान देना सावधानी से, द्रव्य के लक्ष्य से नहीं, सुनना ध्यान से, क्षेत्र के लक्ष्य से नहीं, काल के लक्ष्य से नहीं, भाव के लक्ष्य से होता है। धर्म स्वयं भाव स्वरूप है और धर्म का अवलंबन भी भाव स्वरूप है। अब क्या बात कहते हैं, मैंने परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ो, मैंने स्लोगन लिखा रखा है परद्रव्य का, ग्राहक तराथी तजो स्वद्रव्य ना ग्राहक। देखो वो द्रव्य को भाव भाव में मिला करके कहा जाता है। अरे कोई भी दो द्रव्य हैं वो बिना भाव के भिन्न भिन्न पहचान ही नहीं जा सकते। ये चेतन और जड़ ऐसे जो नाम दिए हैं ये द्रव्य के मूल नाम नहीं है, मूल तो द्रव्य ही है। पर एक का नाम चेतन और एक का नाम जड़ किस आधार पर रखा, भाव के आधार से, ख्याल में है ना। तो अनुभूति में, अनुभूति के विषय में भी भाव बैठा हुआ है, पारनामिक भाव, और अनुभूति स्वयं औपसमिक छायोपसमिक अथवा छायिक भाव स्वरूप है। ये आगम की भाषा, ये तो शुद्धात्माभिमुख परिणाम, ये अध्यात्म की भाषा। तो मैं तो बाण की बात करना है मुझे, तो जब रचना समझनी होगी तो चार पिल्लर होंगे, कौन से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो वो बाण लोहे का है, ये द्रव्य हुआ, चार तरफ से वस्तु का अस्तित्व है ना, तो वो लोहे का तो है लेकिन कहां पर रखा है, वो तर्कस में रखा है कि कोई फैक्ट्री में रखा है, कहते नहीं डोरी और धनुष के बीच में उसको संधान दशा में ले रखा है, मध्य में स्थित है, ख्याल में आया। और कौन सी अवस्था में है, तो संधान, संधान माने वो लक्ष्य की ओर इशारा कर रहा है, लक्ष्योन्मुख है, ख्याल में आया। वैसे धनुष और उस डोरी के बीच में चढ़ा ले हुए घुमाता रहे, बचपन में हम रामलीला देखते थे तो जो राम और रावण की सेना के जो लोग युद्ध करते थे ना, तो ऐसे चढ़ा लिया और ऐसे ऐसे घुमाते रहते थे, छोड़ दे नहीं थे। लेकिन वो संधान दशा में है, ख्याल में आया भाई साहब, लक्ष्योन्मुख को भाव में लिया, बाण का भाव, और संधान दशा ये उसकी पोजिशन है, ये काल है उसकी अवस्था है, और लक्ष्योन्मुख बाण है। ये तो ठीक है, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अब अस्थि वाला है। अब तकलीफ तो यहां होती है, वही बाण जो अस्तित्व ने से लोहमय कहा है, नास्तित्व ने से अलोहमय। और उन्होंने कहा नास्तित्व ने से वही बाण अलोहमय भी है, डोरी और धनुष के मध्य में नहीं स्थित है, उसी समय और वही बाण की बात है। आप क्षेत्र काल और भाव की बात छोड़ दो, वो थोड़ा ध्रुव पड़ेगी, केवल द्रव्य की बात करो कि जो बाण लोहमय है वही बाण अलोहमय कैसे हो सकता है। अब मैंने अपने कुछ वरिष्ठ लोगों से भी पूछा, अब क्या बात है कि चिंतन तो जिसका जिसमें चल जाए सो चल जाए, और कोई आदमी मान लो किसी दूसरे विषय में लिख रहा है या पढ़ रहा है और हम एकदम से ये लाके अड़ा दे रहे हिसाब इसका क्या है, तो कोई तुरंत नहीं बता सकता। जब तक उसमें पूरा रचपच न जावे तब तक वो उसको जिए वो, तब वो बता सकता है। इसलिए वो संतोषजनक जवाब और दूसरे जो बाण है वे वही लोहे के हैं, उनसे भिन्न बताने के लिए इसको अलोह में कहा है। तो हमें भी थोड़ा ठीक है, संतोष हो गया, बड़े आदमी कह रहे हैं। लेकिन जब स्वयं पढ़ा और स्वयं लिखने का मौका आया और पढ़ाने का मौका आया, तब जो देखो ये जैन दर्शन का अनेकांत में ये हिम्मत है कि वो ये दावे से कह सके कि जो वस्तु है वो ही वस्तु नहीं है, और है भी 100% और नहीं भी 100%। फर्क कहाँ आ गया? अपेक्षा बदल गई। अस्तित्व नए से है और नास्तित्व नए से नहीं है, ठीक है ना। तो वो मान लोहमय है, ये कौन से नए का कथन हुआ? और अलोहमय है, ये कौन से नए का कथन हुआ? तो नास्तित्व नए से अगर उसे अलोहमय कहा जाए तो क्या? देखो नास्तित्व नए से अलोहमय है, इसका अर्थ क्या हुआ कि अलोहमय नहीं है, लोहमय है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो नास्तित्व में भी नेगेटिव है और अलोहमय में जो आ लगा हुआ है वो भी नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव हो गए तो एक पॉजिटिव निकला, लोहमय है, तो बात तो वो ही रही। लेकिन बाण में आपको बर्दाश्त हो जाएगा, आत्मा में नहीं हो सकता। आत्मा जड़ भी है, आत्मा चेतन भी है। सांस रोकना, अभी सांस लेना मत, सांस रोक के सुनना, आत्मा चेतन भी है और आत्मा जड़ भी है। ये मैंने एक बार जयपुर में कहा था तो बाद में हमारे एक बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र ने कहा गया हमको ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि आप अपेक्षा क्यों भूल जाते हो? अस्ति जड़ पने की अस्ति और चेतन पने की अस्ति, दोनों की अस्ति नहीं बता रहे पंकज भाई, चेतन पने के जड़ पने की नास्ति, तो नास्तित्व में से उसमें जड़ता देखी गई, यानी आत्मा में क्या क्या नहीं है। जैसे अभी मैंने दृष्टि के विषय में कहा कि उसमें भेद नहीं है, उसमें राग नहीं है, उसमें पर्याय नहीं है, यानी वो सब नास्तित्व नए से दिखेंगे। कल मैंने उदाहरण दिया था कि लोक में भी नास्तित्व नए से देखने की बहुत पद्धति है और बहुत मैसेज उसके लोग सुन लेते। जैसे एक पंच कल्याणक हुआ और मैं नहीं गया, तो वो क्यों नहीं आए, वो क्यों नहीं आए? कुछ लड़ाई हो गई, कुछ नया ग्रुप बन गया, कुछ ऐसा हो गया, कुछ वैसा हो गया। ये नास्तित्व नए में से इतनी सारी आशंकाएं निकल जाती है। तो हम लोग भैया कितने बीमार हो, भले वहां जाके बीमार हो जाना शिखर जी में, लेकिन जाना जरूर। किस किस को जवाब, मेरे जाने लायक पोजीशन नहीं थी पहले ही से, कई प्रकार की तकलीफें थी। हमारे भाई साहब वहां की व्यवस्था के कमेटी में थे तो मैंने उनको कहा कि भाई साहब मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, जबकि शिखर जी का लाभ तो कौन कौन छोड़ सकता है, मतलब वो तो एहसान नहीं, वो तो उन लोगों का एहसान है जो अपने को ऐसा अवसर मिला। तो उन्होंने कहा किस किस को क्या क्या जवाब देंगे, जो होगा सो बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे, दवाई ले लेना, ये करना, काम करना नहीं करना, लेकिन रहना जरूर। मतलब वो अस्तित्व नए वाली परिणति होनी चाहिए, नास्तित्व वाली नहीं होनी चाहिए। और किसी भी कोई भी आदमी यहाँ अकेला आए, आप अकेले आए, बच्चों को साथ में नहीं लाए? अगर हम बैठे हैं तो हमारा तो कोई पूछ नहीं रहा है पानी को भी, और जो नहीं आए हैं उनके गीत गा रहे। ये किसने का प्रयोग, ये किसने का प्रयोग है, नास्तित्व नहीं का। देखो ये सप्त भंग में से कुछ भंग जो है या निश्चय व्यवहार है द्रव्यार्थी, हम सब अपने दैनिक जीवन में इनका प्रयोग करते, भाषा और परिभाषा नहीं जानते, हाँ मैं जीव हूँ और मैं अजीव हूँ, लेकिन जीव हूँ अस्तित्व ने से और अजीव हूँ ये साथ में लगाना, तोड़ मत देना बात को। माता शत्रु पिता बैरी हो जाएगी, सुना है आपने माता शत्रु पिता बैरी? सुना तुमने? सुना हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो संस्कृत की सूक्तियां पढ़ाई जाती थी, तो एक श्लोक पढ़ाया जाता था, माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पातितर न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। उसका अर्थ क्या था कि वे माता शत्रु और पिता बैरी के समान हैं। अब इतने ही में घंटी बज गई और टाइम पूरा हो गया। तो एक लड़के को ये मास्टर ने पढ़ाया, इतने में घंटी बज गई। पिताजी ने पूछा क्या पढ़ा आज? सब माता शत्रु है और पिता फेरी है। वो बहुत नाराज हुआ, स्कूल आ गया लड़ने के लिए। आप ये पढ़ाते हो भाई? हाँ, वो पूरा तो आपने सुना ही नहीं, बच्चे ने भी पूरा नहीं सुना। क्या सुनना अब इसके आगे? कुछ सुनना बाकी रहता है तो दुनिया भर की बातें करें। जैसे तैसे उसको ठंडा किया और बताया कि देखो भाई, वे माता शत्रु और पिता बैरी के समान हैं। कौन? येन बालोन पातितर, जिन्होंने अपने बालकों को शिक्षा नहीं दी। वो पंडित साहब कहते ना, क्या संस्कार बिना की सुविधाएं पतन की कारण है। शिक्षा नहीं दी, शिक्षा वो है जो संस्कार दे दे। और उदाहरण, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, जैसे हंसों के बीच में बगुले शोभा नहीं देते, वैसे वे बिना संस्कार वाले बिना पढ़े लिखे बालक वे सभा में शोभा नहीं देते। तो माता शत्रु पिता बैरी है कि नहीं? जिन्होंने बालकों को नहीं पढ़ाया वे है। तो नास्तित्व ने से आत्मा अचेतन है कि नहीं? नास्तित्व ने से, नास्तित्व मतलब अचेतन नहीं है, इसका अर्थ तो यही हुआ, ख्याल में आया ना? तो ये बाण के उदाहरण से आचार्य देव ने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की चर्चा की है। और आत्ममीमांसा में समंत्र भद्र आचार्य ने प्रारंभ के छंदों में ही आत्मा को कथनचित सत है, कथनचित असत है, अथवा अस्ति रूप है, नास्ति रूप है, इस प्रकार से उन्होंने सिद्ध किया है। उनका एक बहुत बढ़िया छंद है, सदैव सर्वम को निच्छेद स्वरूप आदि चतुष्टया असदैव विपर्यासात न चेत न व्यवतिष्ठते। वस्तु अपने स्वरूप चतुष्टय से सत रूप ही है, और पर रूप की अपेक्षा देखा जाए तो कैसी है? असत रूप है। तो सत भी हो गई, असत हो गई। जब सत और असत हो सकती तो जड़ और चेतन क्यों नहीं हो सकते? अचेतन माने नास्तित्व में, इसको मत भूलना। इसमें उसके पॉइंट दिए हैं। और तीसरे भंग की बात है, इसमें बहुत चर्चा, आप इसको पढ़ लेना, मैं इसमें ज्यादा नहीं इसका विवेचन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा वो 5 समवाय वाले नयों की और 3 जोड़े जो है वो ज्ञान गेय वाले नयों की, उसकी चर्चा करने की ज्यादा इच्छा है, इसलिए मैं इनको थोड़ा स्पीड में ले जाता हूँ। तो हो गया समय में से। अब गुरुदेव ने एक मर में इसमें समझाया, तो अपन समझते हैं कि बस दो को एक साथ बोलो तो तीसरा हो गया, तो एक या अवक्तव्य हो गया, और क्रम से बोलो तो तीसरा बंग बन गया। तो वस्तु में तीसरा बीसरा कुछ नहीं, तो बोलने में है। गुरुदेव ने कहा नहीं, ऐसा नहीं। तीसरा अस्तित्व नास्तित्व नाम का एक धर्म वस्तु में ये है, इसका नाम है गुरुदेव, ख्याल में आया ना? इसलिए अपन जो इतनी अलंकारिक महिमा करते हैं ना, महाविदेह से आए, भरत में आए, हमारे भाग्य से आए, तो भाग्य जब ये मर्म ख्याल में आए तब खुलता है। ये तीसरा धर्म है तो कैसे? एक मिनट में मैं पूरा करता हूँ कि दो अच्छे अच्छे कार्य करता है, बहुत बढ़िया, लेकिन उनमें एक बड़ा अवगुण है कि वे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते। तो वो रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, हम रहेंगे तो वो नहीं रहेंगे, या तो उसको काम सौंपो या हमको काम सौंपो। हैं दोनों अपने आप में बढ़िया A1, लेकिन साथ में नहीं रह सकते, ख्याल में आया ना? तो मतलब उसमें इस प्रकार की योग्यता नहीं है, कि वो सबको साथ में लेके चल सके या किसी सहयोगी को साथ में लेके चल सके, ऐसी योग्यता नहीं। तो आत्मा में दो योग्यताएं तो हैं कि स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से हो और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से न हो, लेकिन तीसरे धर्म वाली योग्यता न होती तो ये दोनों धर्म एक साथ वस्तु में अवरोध रूप से रह नहीं सकते थे। वो दोनों लड़ पड़ते कि या तो हम रहेंगे या ये रहेगा। तो आत्मा ने कहा तुम लोग लड़ते काहे को हो, इसमें घबराने की क्या बात है, तुम्हारी अपेक्षा तुम रहना, तुम्हारी अपेक्षा तुम रहना, अस्तित्व की अपेक्षा अस्तित्व स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्तित्व रहेगा, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्तित्व रहेगा। तो वस्तु में परस्पर विरोधी ये दोनों धर्म अस्ति नास्ति एक साथ रहते हैं, ऐसी योग्यता का नाम तीसरा धर्म है। और योग साथ कहे नहीं जा सकते हैं, ऐसी योग्यता का नाम चौथा धर्म है। इसके बारे में चर्चा अपन नेक्स्ट पीरियड में करेंगे, ये भी इसके बारे में भी चर्चा होती है। तो वाणी की कमजोरी है, आत्मा का इसमें क्या आया, तो इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, अभी यही विराम देते हैं।